ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दूतावास क्वींसलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने तथा व्यापार बढ़ाने और भारतीय मूल के लोगों को सुविधा पहुंचाने में योगदान देगा। विदेश मंत्री ने क्वींसलैंड के गवर्नर डॉक्टर जीने त्यंग से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और क्वींसलैंड के बीच आर्थिक, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में गढ़वा और चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री गढ़वा में सुबह करीब 11:30 बजे गढ़वा और दोपहर करीब 3 बजे चाईबासा में रैली करेंगे। झारखंड में दो चरण में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। राज्य में 13 और 20 नवम्बर को मतदान होगा। उधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। राज्य में 288 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए 29 अक्टूबर तक 7,994 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। 30 अक्टूबर को जांच के बाद 7,073 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने बताया है कि 921 उम्मीदवारों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला है। सत्तारूढ़ महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार मुख्य पार्टियां हैं। कुछ छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज बैठक है। इस बैठक में अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 सदस्य हैं, गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के 6 और सीपीआईएम का 1 सदस्य है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा को उपाध्यक्ष पद की पेशकश की है, जो विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य के पास हाथी के हमले में 2 व्यक्तियों की मृत्यु के एक दिन बाद ये घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उमरिया में हाथी के हमले से मारे गए 2 व्यक्तियों के परिवारों को 25 लाख रुपए का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 6 नवंबर को ये संपन्न होगा। इसमें गठबंधन के विभिन्न प्रयासों और पहल पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिनसे ऊर्जा सुलभ कराने, सुरक्षा और परंपराएं प्रभावित होंगी। सदस्य देशों में सौर ऊर्जा अपनाने और सौर तैनाती में तेजी लाने के लिए वित्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सभा का 6ठा सत्र पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत में ही हुआ था। इसमें सौर परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण सीमा को परियोजना लागत का 10% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय लिया गया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के गढ़वाल मोटर्स की बस कुपी क्षेत्र में गहरी खाई में गिर गई। गढ़वाल मोटर्स की ये बस गोलीखाल क्षेत्र से करीब 35 से 40 यात्रियों को रामनगर लेकर जा रही थी। बस के गिरने से कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। अभी तक 20 यात्रियों के शव निकाले गए हैं। पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। हरिद्वार में आज 8वां गंगा उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आध्यात्मिक नगरी के चंडी घाट पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन आयोजित कर रहा है। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय दौरे पर आज नागालैंड पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल राज्य की वित्तीय योजना और विकास पहलों से संबंधित प्रमुख मौद्रिक मुद्रों की समीक्षा करेगा। वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल कोहिमा के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उनके मंत्रिमंडल और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल विभिन्न राजनीतिक दलों, स्थानीय निकायों, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।